एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। परिपूर्ण परमात्मा ने जो मनुख दे तन दी बर्तन बनाई है, मन दी बनतर बनाई है, इन्हां दोहां दे चार चार दी गिनती नूं प्रधान रखे। वास्तविक तन की है? हड्डियां। और दूसरा की है? मांस। तीसरा की है? मिंज। और चौथा की है? खलड़ी। इस तो बिना शरीर देखते होर कुछ नहीं मिलता। मन की है? अगर ए एक खास प्रश्न जग्यासु दे अंदर पैदा होवे, और पैदा जग्यासुओं दे अंदर ही होंदा है, जो थोड़ा बहुत मन दे तल ते जींदे ने, जो थोड़ा बहुत अंतर्मुखी होंदे ने, इस तरह दे प्रश्न उन्हां दे अंदर पैदा होंदे ने। की है मन? तो कहना पेगा मन है विचार, मन है सोचनी, मन है यादां दा प्रवाह, मन है अहं स्वरूप, मैं हां अहं अहंकार। इस तरह मन दे ए चार भाग बन गए, मन बुद्ध चित अहं, मन विचार, बुद्ध सोच, चित याद, अहं अहंकार। तन दी अपनी दुनिया है, मन दा अपना पसारा है। तन तामीर है, मन बुनियाद है। तन दरख्त दी तरह है, मन मूल दी तरह। जैसा मन होंदा है वैसे ही तन दी बनतर बनती है। साडे तन दे नैन नक्श, साडे तन दी सुंदरता या करूपता, साडे तन दे बोलां दी मधुरता या कुड़त्तन। गर्ज के जो कुछ भी तन दे सोना है, इस गल दा सबूत है कि बीज सुंदर सी पिछला, उसने एक सोने जिया तन नूं निर्मित कीता है। क्योंकि तन नूं अंतिम समय जद जला दिता जांदा है या कबर दे च पा दिता जांदा है, तो मूल फिर भी बच रहिंदा है मन। इस दे च ने संस्कार, इस दे च हैगे ने जीवन भर दे कीते कर्म। और उस नाल जो मानसिक ढांचा बनदा है, अगला जन्म वैसा ही बनता है। तन करूप है, बाणी कुरख्त है, तो एक गल स्पष्ट है कि मन ठीक नहीं है। लेकिन विकास दे द्वार बंद भी नहीं। ए मनुख पिछली मानसिक घटनावां करके जे तन दे तल ते करूप रह गया है, तो हुण मन नु सुंदर बना के, महान बना के एक परमात्मा नु प्राप्त कर सकता है, और दैवी सुंदरता हासिल कर सकता है, दैवी सुहप्पण हासिल कर सकता है। तो मन की है विचारां दा प्रवाह, बुद्ध की है सोचनी, चित की है चेते शक्ति, अहं की है अपनी चेते शक्ति दा अहंकार, अपनी सोचनी दा अहंकार, अपने विचारां दा अहंकार। मन दे च मन दा ही अहंकार है। अहं किस चीज दा? मन दा, अपने विचारां दा। अहं किस चीज दा? बुद्ध दा, अपनी सोचनी दा। अहं किस चीज दा? अपनी चेते शक्ति दा। पर इस तरह मन विस्तृत होंदा रहिंदा है, बुद्ध विकासशील होंदी रहिंदी है, चित पसरदा रहिंदा है, अहंकार फैलदा रहिंदा है। और इस तरह मन दे आसरे ते ਮਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਿਰਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਥਮ ਲਈਏ ਮਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਤਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਹੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਅਹੰਗ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਤਨ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਚੋਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਸਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਤੜਪ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛਲੀ। ਇੱਥੇ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੀਖ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮੂਲ ਹੈ, ਮਨ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਤੇ ਹੀ ਤਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਹੈ ਖੜਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਮਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸਦੀ ਪਕੜ ਜਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ। ਜੈਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਤਨ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਤਨ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਦਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਰਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਉਸਦੇ ਚ ਮੋਤੀ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੌਨ ਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਜੀਵਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਥਲ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਨਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਲ ਜੰਤੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ 84 ਲੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 21 ਲੱਖ ਥਲ ਜੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, 21 ਲੱਖ ਨਵ ਜੰਤੂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ 42 ਲੱਖ ਜਲ ਜੰਤੂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੰਦਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਦਨੀਆਤ ਮੁਹੱਈਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ ਮੋਤੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। तो एक आम साधारण मनुख दे कोल जो मन है वो एक वगदी होई पिंड दी कस्बे दी गंदी नाली कुछ भी नहीं है। शहरां दा गंद ते नालियां च बहुत ज्यादा हुंदा है। मैं पिंड दी नाली नाल तशबीह दे रहा हां, घरां दा गंदला पानी बस ओही कुछ है और कुछ नहीं। आम साधारण मनुखी मन दे च कुछ परिवारक विचार चलते ने, कुछ आर्थिक विचार चलते ने, कुछ आसे पासे दी सोचनी एक नाली तो ज्यादा इस मनुख दे कोल मन दी अहमियत ज्यादा नहीं होंदी। पर एक दार्शनिक है, एक चिंतक है, इते वगदा होया झरना है और ये झरना किसे वक्त दरिया बन जाता है, सरिता बन जाता है। कई दार्शनिक दे ख्यालां नूं पढ़दे ने सुकून मिलता है, चैन मिलता है, जानकारी मिलती है। जैसे कि वगदी हुई सरिता पता नहीं रस्ते च कितनिया दी प्यास बुझा के जा रही है, कितनिया दी लोड़ पूरी करके जा रही है, कितनिया खेतियां सरसब्ज करके जा रही है। एक दार्शनिक, एक चिंतक, एक फिलोसफर पता नहीं कितनिया नूं ज्ञान वंडदा जा रहा है, कितनिया दे हिरदिया नूं महान बनांदा जा रहा है, कितनिया दी जानकारी दे च वाधा करदा जा रहा है। लेकिन संत सागर है, अथाह है, नाप तोल तो परे है। शायद इस वास्ते पातशाह कहंदे ने साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने। जितना महान जुड़िया होया एक साधु है और उस कोल जो विकासशील एक मन है, इस दी महिमा ते बड़े बड़े विद्वान और चारे वेद भी बयान नहीं कर सकते। अथाह है, वो महान है। इस दे विचारां देच परमात्मा है, इस दे विचारां देच निरंकार है, निरंकार असीम है, असीम इस दे विचारां देच है, निरंकार आनंद स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप इस दे विचारां देच है, निरंकार सुहपन दा सोमा है, इस संत दे विचारां देच उस सुंदरता दा सोमा है। इस वास्ते जितना सुंदर मन एक संत को लौंदा है किसे कोल भी नहीं आउंदा। हो सकदा है ऐसे पुरुष दा तन खूबसूरत ना होवे, पूर्वले मन करके, पिछले जन्म दे मन करके, पर हुण जो साधना द्वारा उसने अपना मन बनाया है महान, अति महान, खूबसूरत, जिस दे उत्ते दुनिया दी सारी सुंदरता कुर्बान कीती जा सकती है। शरीरक स्वप्न दे 32 लक्षण मन्ने गए ने, दंद खूबसूरत ने, नेत्र खूबसूरत ने, कन बहुत अच्छे ने, गर्दन सुराई जैसी है, कट केहर जैसी है, कमर शेर जैसी है, चाल हंस जैसी है, बोल कोयल जैसे ने। गर्ज के इना अंगां दी हरकत ते स्वप्न नूं वेख के प्राचीन शरीरक स्वप्न दे ज्ञानियां ने 32 लक्षण मन्ने। नामदेव जी महाराज कहंदे ने प्रणवे नामदेव नाह के बिना ना सोए 32 लखणा। परमात्मा दे नाम तो बिना, ओदी दैवी गुणा दे स्वप्न तो बिना ए 32 लखणा वाली शरीर दी सुंदरता बेमायनी है, बेमायनी है। कहंदे ने साडे देश दे च इस तरह दे चोटी दे कुछ पुरुष होए ने जो मन दे तल ते अति सुंदर, अति सुंदर, पर तन दे तल ते अति क्रूप, अति क्रूप। ऋषि वेद व्यास मन दे तल ते अति सुंदर, तन दे तल ते अति क्रूप। ऋषि अष्टावकर मन दे तल ते इतना सुंदर, इतना सुंदर कि कोई भी उस मन तक गमता रखदा होवे ते मोहित हो जाए, लट्टू हो जाए, परिक्रमा करे। इस तरह जिसे फुल दी परिक्रमा भौरा करदा है, जैसे दीवे दी परिक्रमा पतंगा करदा है। लेकिन तन अष्टावकर कोल उस जमाने दा सब तो करूप तन है। लतां टेढ़ियां ने, बावां टेढ़ियां ने, गर्दन टेढ़ी है, कमर टेढ़ी है, और इतिहासकार कहंदे ने अठ बल सन अष्टावकर। शरीर दे च अठ बल, लेकिन गजब दी गल मन दे च एक भी बल नहीं। जदके आम देखण दे चाहुंदा है लोकां दे मन दे च हजारां बल, हजारां तरह दे वलगन। तन बड़े सुंदर, तन बड़े खूबसूरत, एथिन दा प्रसिद्ध संत सुकरात मन दे तल ते अति सुंदर, अति सुंदर, तन दे तल ते अति क्रूप, अति क्रूप। कदी कदी ऐसा होंदा है शरीरक स्वप्न रखण वाले मन दे तल ते क्रूप होंदे ने, और मन दा स्वप्न रखण वाले तन दे तल ते क्रूप होंदे ने। शायद तन दी क्रूपता उन्हां नूं एहसास करांदी है कि तन नूं सोना बनाना ते हुण कठिन है, औखा है, मन नूं सोना बना लईए। जैसे पातशाह दी बाणी कहिंदी है, एह मन सुंदर आपणा हर नाम मजीठे रंगरी, रंग चढ़ा अपने मन ते, गहने पवा अपने मन नूं, सुंदर बना अपने मन नूं, इतना सोना अपना मन बना कि परमात्मा भी मोहित हो जाए, वह भी भौरे की तरह परिक्रमा करन लग पाए, वह भी पतंगे की तरह निछावर होन लग पाए, इतना सुंदर अपना मन बना। तन ते जैसा है इहदे च कोई विशेष रद्दो बदल करना मनुख दे वस दी गल नहीं, लेकिन मन नू महान सोना मनुख बना सकदा है, अति सुंदर मनुख बना सकदा है। ते मन दा स्वप्न की है, विचारां दा स्वप्न, ते विचारां दा स्वप्न की है, विचारां दे च परमात्मा होवे, और परमात्मा तो सुंदर कोई भी नहीं। वो जगत दे सारी सुंदरता दा सोम है, वो जगत दे सारे आनंद दा सागर है, वो जगत दे सारे प्रकाश दा केंद्र है, मरकज है। तो जद प्रकाश दा केंद्र, आनंद दा सागर, ते स्वप्न दा सोमा विचारां दे च आ जाए, वो मन कितना सुंदर हो जाएगा, वो मन कितना महान हो जाएगा, वो मन कितना खूबसूरत हो जाएगा। मन तो बाद दूसरी दुनिया है बुद्ध, बुद्ध है सोचनी। जो विचारां दा प्रवाह चल रहा है उस बारे सोचना और उसनू अपने जीवन दा अंग बनाना, इसनू कहिंदे ने बुद्ध। जैसे तन दे चार भाग ने, मन दे भी ए चार भाग ने, मन, बुद्ध, चित, अहं। धार्मिक दुनिया दे च इना चारां दा नां ते लिया जांदा है, पर वास्तविक अहं की है, चित की है, बुद्ध की है, मन की है, इसका बोध नहीं है। ये बोध गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी हर एक नूं कराना चाहती है। तो मन है विचारां दा प्रवाह, बुद्ध है सोचनी दा प्रवाह। सोचना, ये विचार मेरे लिए लाभकारी ने कि हानिकारक ने, ये रस्ता मेरे लिए नफे दा है कि नुकसानदायक है, ये रिश्ता मैनू उन्नत करेगा कि मेरे लिए दीवारां खड़ियां करेगा, ये संबंध मेरी जिंदगी नू महान बनाणगे या तोड़ के रख देणगे। इस तरह सोचना, और जद कोई सही सोचता है तो कहिंदे ने इसकी बुद्ध निर्मल है, जद कोई गलत सोचता है तो कहिंदे ने इसकी बुद्ध मलीन है। बुद्धि नू भगत कबीर जी ने मन दी वोटी भी कह लिया है। विचारां दी पत्नी की है सोचनी, विचार दी पत्नी की है सोच, मन दी वोटी कौन है? बुद्ध। भगत कबीर ते इस नूं कबूल करदे ने, पहरी मेरी मन दी जिहड़ी वोटी सी बुद्ध सी, सोचनी सी, ये ठीक नहीं सी, गलत सी। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਡੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਨ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਵੋਟੀ ਸੀ ਕਰੂਪ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਤਨ ਕਰੂਪ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੁੱਧ ਕਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਕਰੂਪ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਕਰੂਪ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਕਰੂਪ ਤਨ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰੂਪ ਬੁੱਧ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਰੂਪਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕਰੂਪਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਰੀਬ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਬੜੀ ਕਰੂਪ ਸੀ, ਕਰੂਪ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਪ ਹੈ। ਕਰੂਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ, ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਜਾਤ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਗੋਤ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਤੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਗਲਤ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਘਰਾਣੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਲਾ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਔਰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਚ, ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸਕਾ ਘਰਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਕੀਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜੈਸੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਲਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਪੁਰਬਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਪੁਰਬਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਜਾਤ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਕੁਜਾਤ, ਪਹਿਲੇ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਲਕਸ਼ਣ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਸੁਰੇ ਪਈਏ ਬੁਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਸੌਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੇਕਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੇਵ ਕੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਹੈ ਸਾਹੁਰੜੇ ਜਾਣਾ। ਸੋਚ ਲੈ ਪੇਕੇ ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੇਕੇ ਦੇ ਚ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਮ ਕਰਕੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਣ ਹਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸੱਸ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਉਤਨੀ ਸੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਸੁਰੇ ਪਈਏ ਬੁਰੀ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮਿਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜੀ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਸੁਰੇ ਪਈਏ ਬੁਰੀ, अब के स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उधर धरी। पर हुण जिहड़ी मेरी बुद्धि है स्वरूपवंती अपने स्वरूप दी लखता करन वाली है, सुजान है, सियाणी है, चंगे लक्षणा वाली है, सौरे घर चो प्यार मिल गए, सत्कार मिल गया। वो पहली जिहड़ी बुद्ध सी वो किथे चली गई? तो कबीर कहिंदे ने भली सरी जे मुई मेरी पहली बरी। जिस दिन दी सुमत आई है उसे ने कुमत नु मार दिता है, सुमत्ती ने ही कुमत्ती नु मार दिता है, चंगी बुद्ध ने ही माड़ी बुद्ध नु मार दिता है, बुद्ध ही बुद्ध नु मार दी है। इस तरह जिस तरह लोहा ही लोहे नु कटता है, चंगी बुद्ध माड़ी बुद्ध नु कट के रख देंदी है। भली सिरी जे मोई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरे अब की धरी। ए सुमति जुगा जुगावा तक तू मेरे नाल रह, तू जीवदी रह। कहत कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टरियो। वड़ी ते हुण मर गई, खत्म हो गई, ओदा हुण सुहाग नहीं रहा। हुण ते सुहागण बन गई है सुमत, मन प्रसन्न है सुमति करके। तो मन की यह विचारां दा प्रवाह बुद्ध की है सोचनी दा प्रवाह। बुद्ध मन दी मत है, बुद्ध है, बुद्ध मन दी वोटी है, मन दी ही मत है, मन दी ही सोचनी है। इना दोहां दा इंज संगम है जैसे कि गंगा जमुना दा संगम, एक होके चल दे ने। विचार चंगे ने, विचारां दा प्रवाह महान है, ते सोचनी दा प्रवाह भी महान होवे, ए संगम तीर्थ बन जांदा है। और ए पता नहीं कितने जगत लई भलाई दा केंद्र बन जांदा है। उना लोकां दी मत बुद्ध, उना लोकां दे मन जो संगम तीर्थ दी तरह हो गए, जो गंगा जमुना दी तरह हो गए, पता नहीं दुनिया दे कितनियां नूं निर्मल करदे ने, स्वच्छ करदे ने। तो मन दे विचारां दा प्रवाह शुद्ध हो सके गुरु दे विचार चाहिदे ने, बुद्ध महान ते सुंदर हो सके गुरु दी सोच चाहिदी है, गुरु दा बोध चाहिदा है। और इना दोहां दा संगम वास्तविक जन्म मरण तो रहित कर देंदा है, परमात्मा विच मनुख नूं लीन कर देंदा है। अगले अंतश करण दे रूप ने चित अहंकार।